रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवं भागम पाणो महाशयक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र दिए गए आचार्यों के द्वारा, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतहे नमः। वो रामचंद्र जो रघुवंश में उत्पन्न होते हैं और सीता महारानी के पति स्वरूप विराजमान है, वो जब भी उनके नाम का उच्चारण होता है रामाय राम भद्राय, भद्राय मतलब ऑस्पिशियस, हम कुछ मंगलमय होने वाला है ना, इसीलिए मंगल गान गाए जाते हैं जब भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, है ना। तब कल के दिन जब भगवान राम नवमी के दिन प्रकट होंगे तो मंगल गान गाए जाते हैं, क्यों, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रामचंद्र इसीलिए चंद्र नाम दिया गया। भगवान रामचंद्र क्यों लगाया, क्योंकि अगर भगवान प्रकट हुए सूर्य वंश के अंदर, भगवान जब सूर्य वंश में प्रकट हुए तो चंद्रमा नाराज हो गया, बोला प्रभु आपने मेरा तो कहीं अपनी सेवा में इस्तेमाल ही नहीं किया। तो भगवान बोले चिंता मत करो, सूर्य वंश में प्रकट हुआ हूं तो वंश में सूर्य का सेवा में प्रयोग होगा, तुम्हारा नाम में प्रयोग होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, है ना। तो भगवान सभी के बारे में चिंतन करते हैं, इसलिए भगवान करुणा वत्सल्य भक्त वत्सल्य कहलाते हैं, इसलिए उनके नाम के अंदर चंद्राया आता है। और वेद से सभी वेद इस बात की पुष्टि करते हैं, राम शब्द का अर्थ है रमेति इति रामः, रमेति मतलब रमण करने योग्य, जो सदा चिंतन करने योग्य है वो है भगवान श्री राम। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, आपका जो ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें राम का अर्थ क्या है, रामचंद्र। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं तीनों प्रकार से ये ठीक है। अगर हम इस राम को राधिका मधुसूदन के नाम से उसका छोटा अक्षर माने, राधिका से रा और मधुसूदन का मा, तो भी राम ठीक है, क्योंकि कृष्ण और राधिका मधुसूदन में कोई भेद नहीं, तो ये कृष्ण का ही मंत्र है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो है ना कृष्ण बलराम का उपासक हूं, कृष्ण का तो आया बलराम का नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि जब बलराम उत्पन्न हुए तो भी उनके नाम का इस्तेमाल हुआ, राम बलशाली थे इसलिए बलराम, राम मतलब आनंद देने वाले भगवान। और अगर कोई व्यक्ति राम का उपासक है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त गणों में मुरारी गुप्त है जो भगवान श्री राम का भक्त है, तो चैतन्य महाप्रभु कई बार समझाने पर भी वो कहते हैं मैं प्राण त्याग दूंगा परंतु रघुवंशी रघुनाथ भगवान श्री राम को नहीं भुला सकता हूं, अपने घर में चाकू छुपा करके बैठे थे, भगवान श्री राम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसे कैसे अपने को मार सकते हो तुम, अगर तुम्हें राम स्वरूप का ही दर्शन करना है तो चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के घर में ही उनको रामचंद्र जी का दर्शन करा दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और श्री राम में कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने जब दर्शन कराया तो बोले ठीक है तुम रामचंद्र जी का भजन। तो अगर कोई राम रामचंद्र सोचकर भजन करता है तो वो भी ठीक है। तो ये हरे को कैसे समझेंगे, हरे को कैसे समझेंगे, तो कई लोग ऐसे सोचते हैं भगवान श्रीमती राधा रानी कैसी हैं, तप्त कांचन गौरांगी, गोरे रंग के हैं, और कृष्ण कैसे हैं, श्यामल या फिर काले रंग के हैं, तो जब काला और पीला मिला दो तो कौन सा रंग बनता है, हरा। तो लोग बोलते हैं अच्छा इसीलिए बोलते होंगे जब राधा और कृष्ण मिल जाते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, परंतु यहाँ पर रंग का नहीं है, यहाँ पर वर्णन है हरे मतलब भगवान श्रीमती राधा रानी की, कृष्ण की शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी हलादिनी शक्ति है। तो अगर रामचंद्र सोचेंगे तो ये शक्ति क्या बन जाएंगी, सीता महारानी बन जाएंगी, बलराम सोचेंगे तो क्या बन जाएंगी, रेवती मैया बन जाएंगी, इसलिए हम किसी भी स्वरूप से चिंतन करें, परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं एक ही चीज है, व्रज राधा कृष्ण। व्रज के राधा कृष्ण के अलावा और कोई चिंतन का विषय नहीं है। भले ही हम राम कथाओं का स्वादन करें, हम जगन्नाथ कथाओं का स्वादन करें, परंतु व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उसका उत्तम मन कहाँ लगा रहना चाहिए? व्रज राधा कृष्ण। खाली कृष्ण नहीं, किसके भक्त हैं? बोले जी कृष्ण के नहीं। किसके भक्त हैं? बोले राधा कृष्ण के नहीं। किसके भक्त हैं? व्रज राधा कृष्ण। व्रज में जो राधा कृष्ण हैं, हम उनके उपासक हैं, हम और किसी के नहीं। तो ये रसाभास हो जाता है अगर हम ऊपर तो कृष्ण चर्चा कर रहे हैं और नीचे राम और सीता की चर्चा कर रहे हैं मंत्र के अंदर। तो ये महामंत्र सीधा सीधा व्रज राधा कृष्ण के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। तो अब हम आज अपने प्रथम चरण पे प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि रामायण को सात भागों में बांटा गया, जिसमें से पंचम सोपान है अमृतपान, जिसमें सुंदर कांड का वर्णन आता है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता आकर के पहुंच गए हैं समुद्र के तट पर, इससे पहले की कथा आपने सुनी है पिछले विगत दिनों में, कल और आज में, समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं तो वहां पर बड़े चिंतित हैं, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। अंगद जी तो कहते हैं भगवान श्री राम ने सेवा दी है, जाओ सीता का पता लगाओ, इस समुद्र को कौन पार करेगा, ये तो बहुत विशाल है, जहां तक दृष्टि जाती है सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है। तो बैठ जाते, कहते मैं यहीं बैठे बैठे प्राण त्याग दूंगा, समाधि ले लूंगा, लेकिन पार नहीं जाऊंगा। इतना सब चिंतन चल रहा था तभी वहां पर गुफा में से एक व्यक्ति निकल आए, उनका नाम क्या था? संपाति। जटायु के भाई हैं। जटायु और संपाति, कथा आती है सतयुग की, दोनों बहुत ही श्रेष्ठ गिद्ध जन्म लिया, गिद्ध कुल के अंदर दोनों में कंपटीशन हो गया, रेस लग गए कौन पहले सूर्य को जाकर के छुएगा। संपाति और जटायु रेस कर रहे थे, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दौड़ते 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 संपाति आगे निकलने वाला था, जटायु आगे निकलने वाला था, संपाति ने कहा ये क्या हो रहा है, ये मुझसे, उसने और तेज गति कर दी और क्या हुआ, सूरज के पास तेजी से पहुंच गया। सूरज के प्रकाश के कारण संपाति के पंख जल गए और वो नीचे गिर गया। आकर के कहां गिरा? समुद्र तट पे ही था। और जो बैठे थे जटायु, उनको बहुत ही रुदन होने लगा कि मेरे भाई के पंख जल गए। तो जटायु ने भी श्री राम की सेवा करी और संपाति ने भी श्री राम की सेवा करी, लेकिन संपाति को मालूम नहीं था ये लोग कौन है। संपाति इतना विशाल गिद्ध था, बड़ा सी चोंच खोल करके कहता है जितने भी वानर है ना, लड्डू पेड़े जैसे नजर आ रहे हैं, सबको खा जाऊंगा। तो कहते हैं कौन आप लोग? हरे कृष्णा। तो आप लोग कौन है? कहते हम लोग भगवान श्री राम की सेवा के लिए आए हैं यहां पर। कहा भगवान श्री राम? कौन है भगवान श्री राम? कहा अयोध्यापति श्री राम, वो आ गए हैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए, जिसे रावण लेकर चला गया है। कहा रावण लेकर चला गया है? कौन सीता? कहा जिसकी मदद जटायु ने की थी। जटायु का नाम सुनते ही बोले तुम जटायु को जानते हो? अभी जो खाने के लिए तैयार थे वो तुरंत ही परिवर्तित हो गए। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जब आप कभी किसी परिस्थिति में हो और आपको लगे कि अभी मुझे ये संसार की परिस्थिति खा जाएगी, तो किसका नाम चिंतन करना चाहिए? भक्त का नाम चिंतन करना चाहिए। इसीलिए जब आप प्रणाम करते हैं, जब आप भोग लगाते हैं, तो पहले किसका नाम बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद का नाम बोलते हैं, क्योंकि भगवान हमको नहीं जानते, भगवान शुद्ध भक्त को जानते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त हमको जानते हैं क्योंकि हमने उसकी शरण ग्रहण करी है। जब हम अपने गुरुदेव, अपने आचार्य प्रभुपाद का नाम लेते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, तब तुरंत हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। हम अपना आईडी कार्ड बताते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। अच्छा अच्छा, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का शिष्य है, ठीक, भगवान जानते हैं उनको। ऐसे ही जानते थे संपाति जटायु को, तुरंत उनके हृदय के अंदर परिवर्तन हो गया और सबको बताने लगे कि आप में से एक वीर है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते। कहा कौन वीर है? कहा हनुमान। हनुमान बहुत बलशाली है। ये हनुमान कैसे प्रकट हुए? इनके तीन प्रकट होने की कथाएं आती हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे वरना ये कांड बहुत अधूरा रह जाएगा, समय कम। उनको क्या क्या कहते हैं? केसरी नंदन। क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? पवन सुत और अंजनी पुत्र, और माँ का नाम नहीं पिता ही चल रहे अभी तो, पवन सुत मारुति, तो अब पवन सुत हो गया ना, पवन सुत केसरी नंदन, और तीसरा शंकर सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो भगवान का तीन नाम से हनुमान जी प्रकट लीलाएं आती हैं। पहला है केसरी नंदन, वानर राज केसरी महाराज के घर प्रकट हुए अंजनी माता के द्वारा। दूसरी कथा आती है कि पवन देव उनके घर के सामने से निकले और अंजनी माता के प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, आपने मेरी सेवा करी, मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? वृक्ष के ऊपर ही रहते पवन देव, बोले मैं चाहती हूँ कि मुझे पवन आप की तरह तेज गति से चलने वाला कोई पुत्र प्राप्त हो। तो पवन देव ने उन पर कृपा करी और उनको क्या दिए, पवन सुत हनुमान। और एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान विष निकला और बाद में अमृत निकला। उस अमृत कुंभ को मोहिनी रूप लेकर भगवान विष्णु ने असुरों को बचाते हुए देवताओं में बांटा, जिसमें राहु केतु का वध किया गया। मोहिनी रूप से शिवजी बड़े आकर्षित थे, उन्होंने कहा मैंने सुना तो बहुत है, विष पिलाकर आपने मुझे सीन से हटा दिया था, पहले विष निकला बाद में 13 चीजें निकली, पहला विष निकला, विष पीने में शिवजी इतने बिजी हो गए भूल ही गए। तो उन्होंने कहा मैंने सुना आपने मोहिनी रूप रखा, प्रभु मैंने आपके सभी रूप दर्शन किए, जब आप राम रूप में आते दर्शन किए, जब कृष्ण रूप में आते हैं दर्शन किए, ये मोहिनी रूप कौन सा रूप है? भगवान ने कहा चर्चा मत करो फंस जाओगे, मोहिनी रूप बहुत मोहित करने वाला है। कहा एक बार तो दिखाइए प्रभु, कहा लीलाधारी हूं मैं, बाद में शिवजी तुम्हारा उपहास ना हो जाए। कहा नहीं, पार्वती खड़ी है पत्नी के सामने तो दूसरे पर नजर नहीं जाती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पत्नी होने से क्या हुआ, मेरा रूप ऐसा है तुम सब भूल जाओगे। बोले नहीं, ट्राई करके देख लीजिए, मेरा नाम धीरों के अंदर आता है, धीरस तत्र नाम मोहयति, तब धीर के उदाहरण में नाम आता है शिवजी। कामदेव मेरे सामने आया था तो मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, रति और काम दोनों भस्म हो गए, प्रभु आप चिंता मत करें, मैं तो उच्च कोटि का वैष्णव नाम यथाम शंभु, जिस प्रकार से निम्न गणाम यथाम गंगा, बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवा नाम अच्युतो यथा, जैसे देवताओं में अच्युत प्रभु आप सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव मैं श्रेष्ठ हूँ, पुराणा नाम इदम तथा पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है। भगवान बोले अच्छा, बहुत ज्यादा लेक्चर दे रहा है। तो भगवान ने कहा ये लो, तुरंत भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। भगवान ने जैसे ही मोहिनी रूप स्वरूप प्रकट किया, भगवान भी कम थोड़ी है लीलाधारी है, भगवान ने अपने रूप को और ही ज्यादा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, यहाँ से कमर दिखा रहे हैं, बाल खोल दिए हैं, हाथ में बड़ी गेंद ले रखी है, खेल रहे हैं गेंद से। तो पूरे के पूरे शरीर का दर्शन जब शिव जी कर रहे नीचे से ऊपर, तो कह रहे हाँ इतना सुंदर स्त्री। पार्वती कोनी मार के कहती है मैं भी तो बैठी हूं, तो है ना, कह पार्वती को कहते तू चुप कर जा। देख ही नहीं रहे, उनके लिए एक साधारण स्त्री बन गई है, पार्वती की तरफ नजर ही नहीं जा रही, विश्व सुंदरी जिसमें भस्मासुर का प्रेम आता है, रावण का प्रेम आता है, अनेक अनेक राक्षस पार्वती को पाना चाहते हैं, वो शिवजी साइड कर दिए और पीछे पीछे भागे एकदम दीवाने के जैसे, और भागे जा रहे हैं। बाद में जाकर के एक स्थिति आई जहां पर शिवजी ने भगवान को ऐसे आलिंगन कर लिया, जब आलिंगन किया आंख बंद है, कह रहे मोहिनी मोहिनी, तभी पीछे से भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दर्शन प्रकट कर दिया। बोले हे भगवान, तब माया टूटी, ये क्या कर दिया मैंने। तो उस समय वहां पर वीर स्खलन हुआ है भगवान शिव का, वो वीर स्खलन सप्त ऋषियों ने किसको खिलाया, अंजनी माता को पत्ते पे रख करके, और उनसे कौन प्रकट हुए, हनुमान। इसीलिए कहा गया शंकर सुवन केसरी नंदन। तो ये हनुमान के चरित्र बहुत ही ज्यादा ऐसे जिसे कहते गुह्यतम है, हनुमान पे चर्चा करें तो पता चले राम कथा रह जाएगी, हनुमान कथा चलती रहेगी। तो सुंदर कांड में ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं, रामचरितमानस में कई प्रकार की चौपाई है, 60 दोहे हैं, जिन 60 दोहों को लोग गाते हैं और कहते हैं हमने सुंदर कांड कर लिया। लेकिन ये जितना भी सुंदर कांड की चौपाई है, जितना भी दोहे हैं, इसके पीछे की शिक्षा क्या है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले कुछ विशेष ज्ञान मालूम होना चाहिए। पहला कि रावण ने सीता मैया का अपहरण कर लिया है, समुद्र तट पर खड़े हैं वानर सेना के साथ श्री राम। तो लंका जो है वो क्या है, रावण क्या है, सीता मैया कौन है, वानर कौन है और भगवान राम कौन है, ये पता होगा तो आपको सुंदरकांड समझ में आएगा। सबसे पहले सीता मैया कौन है? सीता मैया है जीव आत्मा, क्योंकि जीव तत्व है, शक्ति तत्व है, तो सीता मैया है जीव आत्मा। हम सब कौन है? जीव आत्मा। लंका कौन है? ये हमारा शरीर, क्या है? शरीर। इस लंका में किसको कैद किया है? सीता मैया को, ठीक है। और किसने कैद किया है? रावण ने। रावण कौन है? हमारा मन। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बाल भद्रदम, बड़ा बलवान है, बलशाली है ये मन। इसने किसको कैप्चर किया है? सीता मैया को रख दिया है ना। अब बचाने के लिए किसकी जरूरत है? राम की जरूरत है। तो राम तो है ही भगवान, स्वयं भगवान आने वाले हैं बचाने के लिए, जो कल प्रकट होंगे आप सबके सामने। प्रकट कृपाला भगवान जो है, कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। और इसके अंदर हनुमान कौन है? वानर कौन है? गुरु। गुरु जो है वानर के समान है, जो पहले भगवान के प्रकट होने से पहले आपके जीवन में प्रकट होते हैं, और वो आकर के ऐसा परिवर्तन करते हैं, सारा इंफॉर्मेशन देते हैं भगवान को कि तुम्हारी भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है। तो ऐसे जो गुरु हैं हमारे जीवन में आते हैं वो है श्रील प्रभुपाद। गुरु शब्द का अर्थ अगर यहां देखें, गुरु का मतलब है भारी, और हनुमान को वानर कहते हैं। वा, वा का मतलब, वा का मतलब और नर का मतलब, इसको संधि विच्छेद करेंगे दो भागों में। वा मतलब वैसा, कैसा? नर जैसा। तो हनुमान कौन है? इन मनुष्य है या बंदर है? नर जैसे हैं, लेकिन नर है भी नहीं, देखने में दो पैर पे खड़े, हाथ पे ऐसे ले रहे, कौन सा बंदर देखा ऐसे गदा लेके खड़ा हुआ। तो वानर, नर भी है और नर नहीं भी है, वानर नर जैसा है। ऐसे गुरु कौन है? वानर, नर जैसा है, दिखता तो मनुष्य जैसा है लेकिन उसके अंदर भगवान की कृपा भरी पड़ी हुई है। वो आपको बचाने के लिए आया है। एक कुएं में दो आदमी गिर गए, एक आदमी गिरा था पहले और आवाज लगा रहा था बचा लो बचा लो, दूसरा आदमी आया, उसने देखा कौन गिरा हुआ है, वो रस्सी टांग करके पेड़ से बांध करके कुएं में उतर गया। जब तीसरा व्यक्ति आया, उसने गांव वालों को बुलाया तो देखा कुएं में कितने लोग हैं? दो। अब दोनों गिरे थे क्या? एक गिरा था और दूसरा बचाने के लिए रस्सी को पकड़ के उतरा था। तो हम हैं वो पहला व्यक्ति जो कुएं में गिरे हैं, इस भव सागर में गिरे हैं, और दूसरा व्यक्ति कौन है? गुरु, जो रस्सी बांध करके, कृपा की रस्सी बांध करके हमें बचाने के लिए उतरता है। तो गुरु वानर है, नर जैसा दिखता है लेकिन नर नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्ञान है। और कई बार क्या करते हैं हम लोग, अपराध करते हैं। गुरु अवज्ञा, गुरु को साधारण मनुष्य समझना एक प्रकार का अपराध है। हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या है, बस थोड़ा बहुत भक्ति का ज्ञान है, ये भी माला करते हम भी माला करते, ये भी धोती कुर्ता हम भी धोती कुर्ता। जिस दिन ये ज्ञान प्रकट होगा, गुरु अवज्ञा बंद हो जाएगी, तो भक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी ने बोला हनुमान आप बड़े बलशाली हैं, जाइए सीता मैया का पता लगाइए। हनुमान ने कहा ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं जाऊंगा, लेकिन जब तक जामवन जी पुष्टि नहीं कर देंगे। जामवन जी ने कहा अरे हनुमान, तुमने बचपन में ही सूर्य को पान कर लिया था, खा लिया था सूर्य को, तो तुम्हारी तो बल की क्या कह सकते हैं, बहुत बलशाली हो तुम, जाओ मैं कहता हूं। जामवन जी के कहने पर हनुमान ने पर्वत के ऊपर अपनी गदा लेकर के चढ़ गए, विशाल शरीर धारण करके, और जैसे ही चढ़े क्या बोला? जय श्री राम। क्या बोला?
जय राम।
इतना कच्चे बोलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे लंका, बोलिए जोर से जय श्री राम। जैसे करके बोले, जिस पर्वत पे चढ़ते थे वही पर्वत नीचे धस जाता था, पूरा नीचे बैठ जाता था, है ना। जय श्री राम बोल रहे थे, पर्वत नीचे धसता जा रहा था। तब उन्होंने एक पर्वत को प्रणाम किया और पर्वत को प्रणाम करके कहते हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे भगवान श्री राम की सेवा के लिए जाना है, मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि समुद्र पार करके मैं एक ओलंपिक गोल्ड मेडल बना लूं, कि मैंने इंग्लिश चैनल पार किया था या फिर अरेबियन सी पार किया एक छलांग में, गोल्ड मेडल गोज टू श्री हनुमान, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं भगवान राम की सेवा करना चाहता हूं। ये बात सुनते ही चर अचर हर वस्तु भगवान की है। भगवान कहते हैं ना गीता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चर अचरम, मेरी अध्यक्षता में चर और अचर दोनों वस्तुएं काम करती हैं। जैसे ही चलने वाली वस्तु जो जीव है, अचल वस्तु जो ना चलने वाला पत्थर है, वो भी भगवान के अंश मात्र प्रकट हुए भगवान की कृपा से। पत्थर बोला, पहाड़ बोला, ठीक है अगर राम की सेवा में जाना है तो मैं नहीं धसूंगा, वो भी अपनी शक्ति लगाकर खड़ा हुआ। भगवान के भक्त हनुमान ने एक छलांग मारी। अब टीवी सीरियल में दिखाया जाता है उड़ते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए नहीं गए हैं, कैसे गए हैं, एक छलांग में, वन स्टेप ऐसे। लेकिन जैसे ही चलना प्रारंभ किया, इसमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जैसे ही भक्ति में प्रारंभ करते हैं तो हमको बीच में बहुत सारे व्यवधान आते हैं, है कि नहीं। हरिनाम तो मिल गया, लेकिन हरिनाम जब लेकर के गुरु आता है हमारे जीवन में तो गुरु को प्रचार करने में बहुत व्यवधान है और हम भक्तों को उस प्रचार कार्य को स्वीकार करने में बड़े व्यवधान है। मानते हैं कि नहीं, ऑब्स्टेकल्स हैं भक्ति के, नहीं ये फ्री है, मस्त लाइफ है एकदम। ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, इट्स फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो पहला ऑब्स्टेकल क्या आता है, कहते हैं कि एक सबसे पहले पहाड़ निकल के आया। जैसे ही हनुमान ने जंप मारी एक पहाड़ निकल के आया, इतनी जोर से पहाड़ निकला, ऊंचा आकर के खड़ा हो गया। कहते हैं उसका नाम था मैनाक पर्वत। मैनाक, नाक होती है ना, मेरी नाक, मैनाक पर्वत है ना, ईगो आकर खड़ी हो जाती है, हमारी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। तो मैनाक पर्वत, गोल्डन माउंटेन, सुनहरे रंग का पर्वत था, वो निकल के आया। बोला, हनुमान तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सामने आकर के खड़ा हो गया, मुझे पार करके जाओ। कहते हैं ये जो पर्वत था उसने मन में एक लालसा उत्पन्न करी हनुमान के कि थोड़ा आराम कर लो। अभी तो क्या किया था, जंप मारा ही था, जैसे ही कूद मारी वैसे ही पहला क्या आ गया, थोड़ा रिलैक्स कर लो। फर्स्ट चैलेंज, पहला क्या चैलेंज आता है लाइफ में, भक्ति प्रारंभ करो, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको भक्तों के संग में जो आपको आराम बताएंगे। 16 वाला नहीं होती सुबह, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करता, 8 सुबह 8 शाम। एकादशी व्रत, अरे प्रभुपाद ने फीस्टिंग बोला, फास्टिंग कब बोला, खूब खाओ, कूटू खाओ, आलू खाओ, साबुदाना खाओ, रिलैक्स प्रभु, रिलैक्स, डोंट रन इन भक्ति, वन हु रन ही फॉल डाउन, है ना। तो लोग इस प्रकार से उत्साह को भंग करते हैं, लेकिन उत्साही भक्त को उत्साही भक्तों का संग करना चाहिए, उसे समझना चाहिए किसी भी पल असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जिस लेवल पर हो उससे नीचे गिरा दे, उससे उठाए उसके पास जाना चाहिए। जैसे ही पता चल जाए ये व्यक्ति मुझे नीचे खींच रहा है, भक्तों की बुराइयां कर रहा है, मंदिर की मैनेजमेंट की टीचिंग्स दे रहा है जबकि मुझे गीता की टीचिंग्स की जरूरत है, तो उस व्यक्ति से तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। तो हनुमान यहाँ पर कहते हैं उस मैनाक पर्वत ने बीच में अपनी नाक लगा दी है और कहता है जाने नहीं दूंगा, थोड़ा रिलैक्स कर लो। हनुमान ने थोड़ा सा समय पाते ही उसके सिर पे एक पांव रखा, स्टेपिंग स्टोन पैर रखा, और क्या किया, दूसरा छलांग मार दिया वहां से, सेकंड स्टेप। तो हमको जितने भी लोग हैं इन लोगों को स्टेप समझते हुए कि मेरी प्रगति में एक सीढ़ी है, व्यवधान तो है लेकिन सीढ़ी है। एवरी एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग, हर एक चीज मेरे जीवन में अनुभव है, ये सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर क्या हुआ, दूसरी जगह जब जंप मारने लगे तो कहते हैं, बताया गया, जात पवन सुत देवन देखा, जान कहू बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पढ़हिन आई कहीं तेहि बाता। सुरसा नाम की माता निकल के आई, क्यों आई, जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा ये आदमी भगवान की सेवा करने जा रहा है, एलिजिबल है कि नहीं है, इसीलिए दीक्षा देने से पहले आपको टेस्ट लिया जाता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स IDC, सही से तैयार है कि नहीं माला जपने के लिए, भक्त बनने के लिए। तो जैसे ही हुआ, जात पवन सुत देवन देखा, जैसे ही उन्होंने देखा क्या किया, जान कहूं बल बुद्धि विशेषा, इसमें बल है बुद्धि है, इसका चेक करने के लिए किसको भेजा, सुरसा नाम अहिन के माता, एक माता जी को भेज दिया सुरसा नाम की, और कहा पढ़हिन आई कहीं नहीं बाता। कहां से आई है सुरसा माता, ये चेक करने आई है बुद्धि कितनी है। तो आकर क्या करती है, सामने खड़ी हो जाती है, और कहती हैं मैं तुझे खाऊंगी। और वर्णन है एक योजन अपने मुंह को खोल दिया, कितना? एक योजन। एक योजन समझते हैं कितना होता है? कितना? कितना? एक 8 miles और 80 miles। नहीं इतना सही नहीं, इतना बड़ा नहीं खोला। वन कोस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, वन योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर या 7 किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं, 7 से 12 के बीच में, बाकी हम अभी निर्णय नहीं लेंगे। तो योजन होता है 7 से 12 किलोमीटर के बीच, कोस होता है 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से योजन, एक योजन मुख को खोला, बोले घुसो इसमें हनुमान, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं, माता की भूख शांत नहीं करोगे, कैसे हो पुत्र? तो हनुमान ने जब देखा उन्होंने एक योजन मुंह खोला है, हनुमान ने अपने शरीर को 8 योजन ऊंचा बना लिया, 8 योजन ऊंचे हो गए। कितने हो गए? 8, अब लगा लो 7, 8, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर ऊंचे। 56 किलोमीटर ऊंचा मुंह खोलने के लिए बोला, उन्होंने भी अपना मुंह खोल दिया। जब 8 हो गया तो हनुमान ने अपने, उस सुरसा ने अपने मुंह को 16 किलोमीटर खोल दिया, 16 योजन, 16 × 8, 7 लगाते रहिए कितना ऊंचा, 16 योजन मुंह खोल दिया हनुमान ने। फिर अपने शरीर को 16 योजन ऊंचा बनाया। फिर सुरसा बोली, अभी नहीं, 50 योजन अपने मुंह को खोला। हनुमान बोले, ये तो बढ़ती जा रही है। फिर 50 योजन अपने शरीर को विशाल किया, जय श्री राम। फिर सुरसा ने अपने मुंह को 100 योजन, ये भाग, ये वर्णन है रामायण में, 100 योजन मुंह को खोल दिया विशाल। अब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी यहां पर शिक्षा देते हैं कि ये सुरसा और कोई नहीं है, ये कौन है? भक्तों के बीच में अहंकार का आ जाना, अहंकारा विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कोई भी सेवा दे दो, हर भक्त क्या चाहता है? क्रेडिट लेना, ये तो मैंने करी, मैंने प्रभु जी फोटो जब खींच रही थी ना, उस टाइम मैं झाड़ू लगा, मेरी फोटो नहीं आई, प्रभु जी मैं ही तो था, मैं सेवा कर रहा, मेरा नाम लिखिए प्रभु जी। तो वो जो है क्रेडिट लेना चाहता है, और इसमें कई बार जिसका नाम आ जाता है, प्रभु जी उनने तो कुछ भी सेवा नहीं करी, वो तो बहुत ही पीछे थे, लास्ट में आए 5 मिनट, जब फोटोग्राफर आया उसी टाइम आए, उन्हीं का सबसे बड़ा आ गया प्रभु जी। प्रतिस्पर्धा में उस व्यक्ति की बुराई करते हैं और कई बार झगड़ा हो जाता है, वो आदमी और सामने आकर आप खड़े हो जाएंगे, आप ज्यादा बड़े भक्त बनते हैं, कितने दिन हुए, दीक्षा कब हुई आपकी, हाँ? ऐसे कंपटीशन चालू होगा। तो ये क्या है? वो बोल रहे हैं सुरसा नाम की राक्षसी देवताओं के द्वारा भेजी जाती है टेस्ट करने के लिए भक्ति में प्रगाढ़ता कितनी है। जब वो सामने आके खड़ी हो जाएगी तो सामने वाला 1 योजन, आप फिर 1 योजन, फिर वो 16 योजन, आप 16 योजन, वो 50 योजन, हाँ 50 योजन, मैं बड़ा, अरे दही बड़ा, दोनों दही बड़ा, कोई बड़ा नहीं। शिवजी का जो डमरू है वो बजता है क्या? तुम बड़ा। सुना ना, तुमड़ा। शिवजी कहते हैं कि देखो राम को अपने जीवन में लेके आना है, मैं राम का भक्त हूं तो एक ही शिक्षा देता हूं, हमेशा क्या बोलो? तुम बड़ा, कभी मत बोलो मैं बड़ा, तुम बड़ा। यही बोलोगे तो राम आएंगे जीवन में, और बोलोगे मैं बड़ा तो दही बड़ा बन जाएगा, कहीं जाने वाले नहीं है। तो हनुमान ने क्या कहा, जैसे ही सुरसा ने 100 योजन अपने मुख को खोला, हनुमान ने क्या किया, तुरंत सूक्ष्म रूप धरकर उनके मुख में प्रवेश कर लिया और बाहर निकला। बोले मां आपने कहा था अंदर जाऊं, बाहर आऊं, आ गया। वो बड़ी हंसी, बोली वाह तूने दिल खुश कर दिया, सच में तुझ में बल बुद्धि विशेष है, ऐसी बल बुद्धि हर एक में नहीं। तो भक्त बनना तो सरल है, लेकिन भक्त बने रहना बहुत मुश्किल है। शिल प्रभुपाद को लोग आके कहते थे, प्रभुपाद वो मंदिर छोड़कर चले गए, प्रभुपाद कहते थे कुछ नया बताओ। मंदिर छोड़कर चले जाना, भक्ति छोड़कर चले जाना, ये विशेष नहीं है, मंदिर में टिके रहना और भक्ति करते रहना ये विशेष है। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो ये हनुमान है इन्होंने क्या सिखाया, बिकम इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट इन फ्रंट ऑफ ईगो। जब सामने वाला विशाल मुंह खोल दे अपने अहंकार का तो सामने क्या बन जाओ, प्रभु जी आप ही सही हैं, मैं तो सबसे बड़ा गधा हूं, यहां आ गया, आप महान है प्रभु जी, आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है प्रभु जी। क्यों, हमें क्या अपने पॉइंट प्रूव नहीं करने चाहिए? पॉइंट प्रूफ डिफेंडिंग मोड तो एनिमल का होता है, जानवर होता है जो क्या कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। अगर हम भी यही काम करेंगे, आहार निद्रा भय डिफेंड करना, तो क्या होगा, पशु भी समान, ये नर पशु के समान हो जाएगा। इसलिए जब कोई आपको आकर आपकी गलतियां गिनाए, इसको प्रणाम करके स्वीकार करना चाहिए, प्रभु आप बहुत महान है, आपको दिख रही हैं, मैं ऐसा पापी हूं, मुझे अपनी गलतियां दिखती नहीं, आप महान है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। इनसिग्निफिकेंट बन जाना, विनम्र बन जाना, ये हनुमान शिक्षा देते हैं। और इस शिक्षा को लेकर अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप मतलब हमें छोटा बन के ही भक्ति करनी चाहिए। त्रणादपि शुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनयम्। कहना तो बहुत सरल है, रोज बोलते भी हैं, लेकिन जब आती है ना त्रणादपि शु नीचे ना, शु के नीचे आना किसी के, तो प्रभुपाद कहते थे शुनिचेना बोलने से नहीं काम चलता है। भक्त बोलते तो है प्रभु जी हरे कृष्णा आपकी कृपा से, प्रभु जी बहुत कृपा है आपकी, लेकिन कभी सामने दोष आ जाए तो ठीक है, प्रभु जी कैसे आपको हमारे अंदर गलती नजर आती है, और लोगों में तो कोई गलती नहीं, सब तो सोना खा के आए हैं, पर मोती खा के आए हैं, हम ही हैं सबसे ज्यादा खराब, ये क्यों इच्छा आ रही है, क्योंकि मेरी कंपैरिजन की भावना है। तो विशेष प्रवचन में नहीं जाएंगे, अपनी कथा प्रारंभ करते हैं, बहुत कुछ वर्णन करने के लिए है। फिर आगे तीसरा चैलेंज आ गया बीच में, क्या चैलेंज आया, निसाचरी एक सिंधु मुह रहिया। निसाचरी अपने मुख को खोल करके नीचे रहती थी, सिंधु के नीचे, ये सच में राक्षसी थी, ये देवताओं ने नहीं भेजी थी। क्या नाम था, ठीक हो, नाम क्या था उसका, सिम्हिका। सिम्हिका नाम की ये राक्षसी क्या करती थी, उड़ने वाले पशु पक्षियों को परछाई देख करके पकड़ लेती थी और एक फोर्स से नीचे खींचती थी और गप मुंह में खा जाती थी। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए कितनी शक्तिशाली होगी वो राक्षसी। उसने जैसे ही हनुमान को जाते देखा, परछाई को पकड़ा, कहा आज बढ़िया केसर बादाम का लड्डू खाने को मिला, केसरी नंदन है ना, तो केसर बादाम का लड्डू खाने को मिला। जैसे ही मुख में रखा हनुमान को सुरसा ने, सिम्हिका ने, तो यहां पर बताते हैं सिम्हिका बिल्कुल उन भक्तों जैसी है जो दूसरे भक्तों की सिर्फ नेगेटिव पार्ट को पकड़ते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्वरूप है और एक परछाई है, परछाई काली साइड है हमारी, डार्क साइड, ब्लैक, और पूरा स्वरूप क्या है, सुंदर, पॉजिटिव। हर व्यक्ति में कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, लेकिन जो सिम्हिका नाम के राक्षस होते हैं, जो हम भक्तों में भी पाए जाते हैं, वो क्या ढूंढते हैं, सिर्फ परछाई, और उसको इतना ड्रैग करेंगे ना, जैसे वो खींचती थी, इतना खींचेंगे ला करके, जब तक खत्म ना कर दें तब तक चैन नहीं पड़ेगा। तो हम उस व्यक्ति के नेगेटिव पॉइंट्स को खींचते हैं, प्रभु जी माला तो मंगला आरती में कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता 9 बजे के बाद क्या बन जाता है ये आदमी, आप हमसे पूछो, सेवा तो हम करते हैं ना, हरे कृष्णा तो कोई भी कर लेगा। ये सब भावना वही है, उसकी पॉजिटिव साइड नहीं कि बेचारा 9 बजे से पहले माला कर लेता है। एक बार एक व्यक्ति हैदराबाद मंदिर की ओपनिंग में प्रभुपाद जी के पास आया और कहता है, प्रभुपाद जी आप जानते हैं इस मंदिर में एक भी व्यक्ति 16 माला नहीं करता है, एक भी व्यक्ति 16 माला नहीं करता। प्रभुपाद जी जब कर रहे थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोला अच्छा मुझे तो लगता है एक व्यक्ति करता है। कहने नहीं, आपको लगता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत है, स्वामी जी नोबडी, कोई भी 16 माला नहीं कर रहा है। कहा मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक व्यक्ति तो कर रहा। तो कहते आप कैसे बोल सकते हैं। कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम 16 माला नहीं करते हो। चुप हो गया, बोला हाँ मैं तो करता हूं। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, एक तो बन रहा है ना, आई डोंट नीड मेनी ट्विंकलिंग स्टार्स, आई नीड वन शाइनिंग मून, मुझे एक चमकता हुआ चंद्रमा चाहिए, बहुत सारे चमकते सितारे नहीं चाहिए। ठीक है, एक तो कर रहा है, अपना मुंह लेके चलेगा। दूसरों के नेगेटिव पॉइंट्स को बताने के लिए हम इस्कॉन में नहीं आए हैं, हम इस्कॉन में आए हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। क्या हमने अपने को जान लिया जो हम दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये गुण है, उसमें ये अवगुण है, उसमें ये अवगुण है, उसको देखो उसको देखो। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ये पुस्तक प्रारंभिक अवस्था में प्राकृत भक्तों को पढ़ाई जाती है। क्यों, हमें अपना टारगेट मालूम पड़े, लक्ष्य मालूम हो, हमारा लक्ष्य है भक्त बनना। और अगर हम भक्त बन जाएंगे ना तो फिर ये सिम्मिका हमें कुछ कर नहीं पाएगी। जैसे हनुमान को, हनुमान को उसने चाहा मैं खा जाऊं, लेकिन हनुमान ने क्या किया, अपने शरीर को विशाल कर एक गदा का प्रहार उसके मस्तक में मारा, अंदर से यहां जिह्वा के तलु से फाड़ते हुए, सर को फाड़ते हुए बाहर निकले और क्या बोले, जय श्री राम। तो बस ये बोलना है आपको, क्या बोलना है, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कोई व्यक्ति बुराई करना प्रारंभ करे, लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं नहीं चाहता हूं, वो मुझे खींचता है, तो आप वहां पर क्या बोल सकते हैं, हरे कृष्णा, और वहां से जा सकते हैं, जय श्री राम। जैसे हनुमान बोलकर तुरंत सिम्मिका का वध करके आगे बढ़े, हनुमान तीसरी छलांग में लंका पहुंचे और लंका को दूर से देख रहे हैं, वनवारी है, फुलवारी है, बहुत सुंदर देवता गंधर्व लोक के वहां नृत्य कर रहे हैं, कई विशाल विशाल राक्षस हैं, बहुत सुंदर लंका है, चारों तरफ से सुरक्षित है, बड़े बड़े पहाड़ जैसे पहलवानों के द्वारा, बड़े बड़े पहाड़ जैसे पहलवान खड़े हैं। हनुमान ने कहा अगर मैं गया इतनी बड़ी लंका में कैसे खोजूंगा, कहां है मेरी सीता मैया, तो इसलिए क्या करता हूं, अपना एक छोटा स्वरूप बनाता हूं। गेट पर ही एक राक्षसी खड़ी थी, क्या नाम था उसका,
लंकिनी
खड़ी थी। तो कहते हैं लंकिनी कौन है उसके बारे में वर्णन करेंगे, हनुमान ने एक छोटा सा रूप धारण किया, कैसा, रामायण में वर्णन है मच्छर के जैसा, मसक समान रूप कपिधारी, लंका चलहु सुमिर नरहारी, नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कहे चलसी मोहनिंदरी। क्या कहती है, रोग देती है, इतनी सूक्ष्म रूप से दृष्टि है लंकनी, रोग देती है, ए, मच्छर मसक किधर जा रहा है, रुक। तो हनुमान रुक जाते हैं, कह रहे अरे ये भी देख लिया, तो लंकनी हमारा मिथ्या अहंकार है, हमारा ही मिथ्या अहंकार हमको भक्ति में जाने नहीं देता। प्रभुपाद बोलते थे हमको इस संसार में एक ही शक्ति है जो भक्ति से रोक सकती है, कौन है वो, हम खुद, हमारा मिथ्या अहंकार, वो हमको शरणागत होने नहीं देता। जैसे एक बार एक भक्त को कहा प्रभु जी आपको पता है कल से ना मंदिर वालों ने आपका नाम कीर्तन की लिस्ट से हटा दिया है, अब आपको मंगला आरती गाने को नहीं दिया जाएगा पूरे महीने, आपकी गलतियां देख करके आपका नाम हटा दिया, अब आप कल से मंगला आरती नहीं गा सकोगे। तो इस भक्त ने क्या बोला, अरे मैं तो कल भी गाई थी, आज भी गाऊंगा, कल भी गाऊंगा। करे कैसे गाओगे, आपका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। कहा माइक के आगे से हटाया है ना, साइड में खड़े होकर तो गा सकता हूं। गा सकता हूं कि नहीं, लेकिन हम वहीं पर अटक जाएंगे, हमारा मिथ्या अहंकार, अच्छा इतने साल सेवा करने का यही फल मिला मुझे मंदिर से, यही फल मिला, वो व्यक्ति वहीं अटक गया, उसका मिथ्या अहंकार। लंकनी सूक्ष्म रूप धक्कर भी हमको क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, मिथ्या अहंकार। हम बहुत छोटे बन जाएं विनम्र, तब भी हमको हमारी मिथ्या अहंकार कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है, अंदर से यहां दर्द होता है अंदर। मसक समान रूप कपिधारी, कपि मतलब बानर बंदर, कपि ने छोटा रूप रखकर अंदर गए, अब क्या हुआ, उसने रोक दिया हनुमान जी को, जब रोका, अगर ऐसा मिथ्या अहंकार आपका रोके, आपके मन में कचोटे, क्या कर रहा है तू यहां पर, मंदिर से अगर बाहर जाएगा ना, किसी और सोसाइटी को ज्वाइन कर लेगा ना, बहुत आनंद में रहेगा, कहां इन भक्तों के बीच फंस गया, ये बार बार से हरे कृष्णा है, दंडवत प्रणाम है, पीछे से बोलते दंडा लेके मारो इसको, इन लोगों से बचूं कैसे। जब ये भावना उत्पन्न हो तो हनुमान की इस लीला का स्मरण करना चाहिए, एक मुष्टिक प्रहार दिया, मुष्टिका एक महाकपि हनी, हनी मतलब थोड़ी पर, मुष्टिका एक महाकपि हनी, रुधिर वमत धरनी धनमानी, रुधिर रोते हुए धड़ाम से, वमनी उल्टी करके धड़ाम से लंकनी गिर गई। मिथ्या अहंकार कभी उठे तो खींच कर एक मारो, हट, मैं भगवान का दास बनने आया था या बॉस बनने आया था, मैं दास बनने आया हूं, दास अनुदास, ठीक है वो भक्त मुझे नीचे गिरा रहा है तो इसका मतलब मेरे को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, दास अनुदास की स्थिति में, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आनंदम आनंदम बुद्धिवर्धनम, लेकिन नहीं, मिथ्या अहंकार पकड़ेगा। तो मुष्टिक प्रहार किया और जाने लगे। तो लंकनी कहती है ब्रह्मा जी ने वर्णन किया था, जिस दिन एक वानर एक मुष्टिक प्रहार में तुझे उल्टी की खून की उल्टी करवा दे, समझ लेना लंका का समय तहश नहश होने का आ गया है। तो समय आ गया है, जब कभी गुरु आपके जीवन में आए कोई व्यक्ति और प्रचार करने लगे, और जब प्रचार करके मुष्टिक प्रहार से अपने कड़वे प्रवचन से आपके हृदय को विदीर्ण कर दे, दुख लगे, यार इसने तो हरा दिया, मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। हर चीज के ऊपर एक ना एक गीता का श्लोक ले आता है, बोलता है प्रभुपाद ने ये कहा, प्रभुपाद ने ये कहा, सुनने को तैयार नहीं है, मैं तो ना हार गया उसके सामने। तो बहुत अच्छा है, वो समय आ गया है कि अब ये जीवात्मा इस लंका रूपी शरीर से मुक्त होने वाली है, समय आ गया। तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। नित्य अहंकार के कारण ही हम शरणागत नहीं होते, हम सिर्फ नित्य अहंकार के कारण शरणागति में डिले करते हैं। प्रभु जी आप संडे को आया करिए क्लास के अंदर, समय नहीं है प्रभु जी, आपकी बातें तो अच्छी लगती है, टाइम नहीं प्रभु जी, घर बैठ के क्रिकेट का मैच देख लेगा 3 घंटे, लेकिन मंदिर में कथा सुनने के लिए समय नहीं है। क्यों? मिथ्या अहंकार केवलम। सिद्ध अहम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति मिथ्या अहंकार की बीमारी से रोगग्रस्त है। उसको गिरा करके लंकनी को हनुमान आगे चलते हैं और कहते हैं, लंकनी कहती है मैं बड़ी प्रसन्न हूं, आज मैंने किसको देख लिया, राम के एक भक्त का दर्शन पा लिया, तो मैं भी क्या हो जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी। अंदर जाते हैं तो अंदर हनुमान फिर से मशक समान रूप धरी, रूप धरकर मशक जैसा, मच्छर जैसा पुनः रूप धर के अंदर प्रवेश करते लंका में और खोजते हैं सीता मैया कहां है, सीता मैया कहां है, सीता मैया, सीता मैया, सीता। तो गलती से रावण के ही उसमें घुस जाते हैं, है ना। जब रावण के कैंप में, रावण के महल में घुसते हैं तो देखते हैं बड़ी नेगेटिविटी है, बहुत नकारात्मक शक्ति है वहां पर। 10 शीश 10 ग्रीवा 10 सर वाला रावण लेटा हुआ है और सो रहा है खर्राटे मार के, पराठे खा के, पराठे खाते हैं वही खर्राटे मारते हैं सो जाते हैं, ना मंगल आरती का मालूम है, ना गुरु पूजा का मालूम, ना भागवत क्लास का, पराठे खा के खर्राटे मार रहा था, सो रहा था तमोगुनी रावण वहां पर। हनुमान बोले यहां से निकल लो, ये सही जगह नहीं है। भक्त का लक्षण है जैसे ही ऐसी जगह मिले वहां से क्या करे, असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, वहां तुरंत छोड़ दो उस आदमी को। बोले ये तो पराठे खाता रहता है, हम इसको भक्त बनाना चाह रहे हैं और ये तो अपना लगा है, तो छोड़ दो उसको। बोले ठीक है, तेरी करनी तेरे साथ, हम दूसरी जगह प्रचार कर लेंगे। हनुमान वहां से निकले और जब दूसरे महल में प्रवेश किया, महल की पूरी दीवारों पर क्या लिखा है, राम राम राम। अरे अरे लंका में भी राम, वाह प्रभु राम आपकी माया अपरंपार, धनुष के चिन्ह बने हुए हैं, वाह बहुत सुंदर। भगवान के धनुष का एक नाम है, जानते हैं आप लोग क्या नाम है, भगवान कृष्ण रूप में जब आते हैं तो उनके धनुष का नाम है सारंग धनुष, परंतु जब भगवान राम बन के आते हैं उनके धनुष का नाम है कोदंड। कोदंड मतलब किस किस को दंड दूंगा मैं, भगवान आए हैं दंड देने के लिए, कोदंड, कोदंड धारण करते हैं भगवान। तो कोदंड रूपी धनुष को लेकर के भगवान का वहां पर चित्र देखकर हनुमान को बहुत प्रसन्नता हो रही है। हनुमान देखने लगते हैं ये कौन सी जगह है, तभी वहां पर जप की ध्वनि सुनाई देती है। सोते सोते भी एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, राम 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 राम, सोते सोते भी। अब देखिए कितनी परिवर्तन स्थिति है, विभीषण सोते सोते राम बोलते हैं और हम लोग राम बोलते बोलते सो जाते हैं, सोते कि नहीं, अरे राम 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 राम, हम जपते जपते सोते हैं, वो सोते सोते जपता था। अभी हमारा टारगेट बहुत दूर है, लक्ष्य दूर है हमारा, सोते सोते जिस दिन जपने लगेंगे उस दिन जाकर के हम भक्त की कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे विभीषण के पास जाकर के तुरंत विभीषण की नेत्र खुल जाते हैं, उनको अनुभूति होती है कुछ अच्छा हुआ है मेरे इस महल के अंदर, और कहते हैं वर्णन है कि उनको इतना सुंदर एहसास हो रहा है, उन्होंने आंखें खोली और कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। मुझे ऐसा लग रहा है सत्संग प्रारंभ हो गया है किसी के आने से। स्वर्ग में वो सुख नहीं है, स्वर्ग से नीचे पृथ्वी में अपवर्ग में वो सुख नहीं है, उसके एक अंग मात्र भी नहीं है। जो सुख किसमें है? सत्संग में। जो आनंद भगवान की कथा में है वो आनंद इस संसार में कहीं है क्या? तो इसलिए कथा कितने बजे तक चलनी चाहिए? आज कब तक चले? 9 बजे। कब तक चलना चाहिए? अगर आप बोलते हो बंद कर दो तो ये खत्म हो जाती चौपाई, और आप कहते 10 बजे तक चलाओ तो फिर सही है। ज्यादा नहीं, बीच में रोक देंगे। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरही तुला एक अंग। विभीषण कहते हैं अगर तुला मंगा के, तराजू मंगा के अपवर्ग स्वर्ग के सुख को भी एक साइड रखूं तब भी तुलना ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव मतलब किसका?
सेकंड का।
सेकंड जो होते हैं ना, 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, इसको लव कहते हैं। हम तो 1 घंटा प्रवचन करते हैं या 2 घंटा कथा करते हैं, उसमें भी किसी को फल नहीं मिलता। सोचो, क्योंकि हम साधु नहीं है। साधु अगर होते तो कैसे परिवर्तन आता? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र 1 सेकंड के 14वां हिस्से के साथ भी अगर किसी साधु का संग हो जाए परिवर्तन आ जाता है। या तो हमें साधु नहीं मिल रहा है, या तो हमारा संग प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, हम साधु नहीं बन पा रहे हैं। विभीषण बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। विभीषण से हनुमान पूछते हैं, आपने लंका में राम 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 लिखा है, आपको किसी ने आज तक मैनेजमेंट ने टोका नहीं? ये आप क्या कर रहे? भक्त जब भी कुछ करता है तो मैनेजमेंट बीच में आता है, कहता है ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसी तरीके से करो। तो पूछा कि मैनेजमेंट ने, यहाँ के रावण मैनेजमेंट ने कभी कुछ बोला नहीं आपको, आपने राम 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 लिखा? बोले आए थे एक बार रावण गुस्से में, खाते हो नमक हमारा और जपते हो राम का नाम। तो बोले भगवान का जो भक्त होता है ना, कृष्ण भक्त अति चतुर, कैसा होता है? बड़ा बुद्धिमान। तो उन्होंने कहा, विभीषण ने मैंने हंसते हंसते जवाब दिया, कहां राम का नाम है, ये तो आप ही का नाम है। कहा मेरा नाम रावण है, राम नहीं। कहा लेकिन जब से आपका विवाह हुआ है तब से आप राम नहीं हो। कहा कैसे? कहा रावण का रा और मंदोदरी का मां, तो भाभी और भैया का नाम लिखा है मैंने लंका। तो इसलिए रावण ने कहा, अच्छा तो 2 जगह क्यों लिखा है, पूरी लंका में लिखवा दो, है ना। तो राम 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 शब्द पूरी लंका में लिखवा दिया विभीषण के द्वारा, उनके महल में भजन प्रारंभ कर दिया। तो हनुमान विभीषण से मिलकर बड़े आनंद का अनुभव करते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन मेरा कार्य है सीता के पास जाना, मुझे बताओ सीता मैया कहाँ है। विभीषण कहता है, मुझे सब मालूम है, सीधे यहां से जाओ अशोक वाटिका, मैं रास्ता बता रहा हूँ, राइट टर्न जाना, यू टर्न मारना, फिर लेफ्ट जाना, फिर इधर जाना, पूरा बता दिया। वो पहुंच गए वहां पर, GPS तो था नहीं कि अपने आप ही डालकर चले जाते हैं। तो विभीषण के द्वारा नियंत्रित करने पर चल दिया और अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां पर सीता मैया बैठे हुए थे। अब देखिए यहां पर बड़ा ही एक आयरनी है, आयरनी मतलब समझते हैं विडंबना। वृक्ष के नीचे बैठी है अशोक वाटिका, नाम है अशोक वाटिका, जहां पर सारे वृक्ष अशोक वृक्ष है, लेकिन सीता मैया को क्या है, शोक है। तो हम कहेंगे सशोक बैठी है, शोक के साथ बैठी है। तो यहां वर्णन करते हैं आचार्यगण कि यहां पर सीता मैया सशोक क्यों बैठी है। सीता मैया इसलिए सशोक बैठी है शोक के साथ, क्योंकि उन्होंने राम का साथ छोड़ दिया है। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम का साथ छोड़ देता है वो संसार में सशोक रहता है। अब सशोक स्थिति में कैसे अशोक बनना है, हनुमान जी यहां पर वर्णन करते हैं। हनुमान जी ने विभीषण को यह बताया, एक महत्वपूर्ण बात मैंने बताना छोड़ दिया। विभीषण को हनुमान ने यह भी बताया कि हे हनुमान, क्या कभी राम विभीषण कहते हैं मुझ पर कृपा करेंगे? तो विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हनुमान उनको कहते हैं कि आपकी तो बात ही क्या है, हमारे बारे में सोचो, आप तो कम से कम राजा के भाई हो, रावण के, लंका के ऊपर आपका 30% का तो अधिकार है, तीन भाइयों में बढ़ जाए अगर तो 33% का अधिकार, हम कौन है, वानर है। और वहां पर एक चौपाई गाते हुए कहते हैं, प्रात लही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहे ना मिले आहारा। हम तो इतने गिरे हुए हैं कि अगर कोई सुबह सुबह हमारा नाम ले ले तो क्या होगा, उसको आहार नहीं मिलेगा। तो आप तो फिर भी राजा है, जब हम पर कृपा करी है तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। लेकिन क्या हनुमान यहां पर सचमुच ये कहना चाहते हैं? हनुमान क्या कहना चाहते हैं? हनुमान कहते हैं कि सुबह सुबह हनुमान मंदिरों में बहुत भीड़ लगती है, मंगलवार को खासकर इच्छा पूर्ति का दिन होता है, लोग आते हैं सुबह सुबह 4:30-5 बजे हनुमान मंदिर में, और उस दिन हनुमान ओवर टाइम करते, रात को 11-12 बजे तक मंदिर खुलता है, बाकी दिन टाइम पे सोते 9 बजे। तो हनुमान मंदिर में हनुमान कह रहे हैं, प्रात लई जो नाम हमारा, ताते ही दिन ताहे ना मिले आहारा। तो आपके दुख का एक कारण ये भी है, उस दिन आहार नहीं मिलता है जिस दिन कोई व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है, सुबह सुबह हनुमान मंदिर पहुंचता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, भक्त होकर के ऐसा करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं और वो हमको दंड देते हैं। आप सुबह जप कर रहे हो हरे कृष्णा महामंत्र का, और आ जाए बहुत सारे 100-150 कांग्रेगेशन के लोग और पैर पकड़ लें आपके, कहे प्रभु जी कृपा करो, आप कहोगे पहले मुझे लेने तो दे तब तो करूंगा। 9 बजे तक लेने का टाइम है, 9 बजे के बाद देने का टाइम, प्रचार 9 बजे के बाद है, 9 बजे तक कृपा लेने का टाइम। तो ऐसे ही हनुमान जी भी अपने सुबह सुबह बैठ के क्या करते हैं, राम 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 नाम का जप करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइम उनको डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब करने के कारण वो कहते हैं, प्रात लही जो नाम हमारा, ताहे दिन ताहे नाम मिले आहार। उस दिन उसे आहार नहीं लेने दूंगा, उल्टा पड़ जाता है, इसलिए सोच समझ के हनुमान मंदिर जाना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं, सीता जी जो थी वो बैठी हुई थी अशोक वाटिका में, और हनुमान ने मशक रूप धरी, मशक रूप मच्छर का रूप बनाकर एक पेड़ पर बैठ गए और देखने लगे सिचुएशन कैसी है। तभी उन्होंने ध्यान से देखा कि बहुत पतली दुबली हो गई है, जीनहीन अवस्था में है और रुदन कर रही है, कई महीने गुजर गए हैं सीता मैया को। ऐसे ही जब गुरु आपके जीवन में आते हो तो देखते हैं क्या हालत बनाई हुई, आप दूध पी के हट्टा कट्टा तो क्या हालत बनाई है, खरे शरीर की नहीं, अंदर जो सीता मैया है सशोक बैठी है, दुख के कारण तेरा ये हाल, एकदम पतली जीनहीन अवस्था में आत्मा होती है, तब गुरु आके कहते हैं थोड़ा भजन कर। तो यहां पर हनुमान सीता मैया को क्या सुनाते हैं, कुछ बात बताते हैं ऐसी मुख्य जो हमारे सीखने योग्य है। तो कहते हैं, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जो व्यक्ति जप करता है रघुपति के गुणों का, उसके सिंदार से क्या चला जाता है, शोक चला जाता है। तो हम लोग बोलते हैं, कई लोग जी जप की क्या जरूरत है, मन से कर लो ये सुबह सुबह घुमाना, जी कबीर जी कहते थे मैं तो क्या कर दिया, माला ही तोड़ दिया, जिसको मैं रात दिन जपता हूं उसको गिन के क्यों जपूं। लेकिन यहां पर सीता जी के लिए हनुमान जी क्या कहते हैं, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, हृदय से बार 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 क्या बोल रही हैं, राम राम, हृदय से बोल रही, लेकिन मुख से नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब है कि हमको उपांशु जप करने के लिए बोला है, बोले मुख से तो कान सुनने भी चाहिए, मुख से आवाज, मन का जप नहीं बताया है, मानसिक जप नहीं है, कौन सा जप है, मुख से बोले और कान से सुने। तो यहां पर हनुमान बैठ जाते हैं और तभी देखते हैं कि रावण वहां पर आ रहा है, और सभी चील पक्षी सब उड़ रहे हैं रावण के आने से, और रावण हाहाकार करता हुआ प्रवेश करता है और कहता है, सीता मुझसे विवाह कर लो, अब भी तैयार नहीं हुई हो मेरा इतना वैभव देखने के बाद, चलो मुझसे विवाह कर लो। तो आपका मन भी आपको बार 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 अंदर से बोलता है, इतना वैभव दिया तुझे भौतिक संसार का, अब भी तू फंसा है हरे कृष्ण महामंत्र में, कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ इसे साइड में, मजे कर, 7 बजे सोकर उठ, 8 बजे सोकर उठ, कोई टेंशन नहीं है, 8 बजे के बाद कर लियो। ऐसे प्रलोभन मन देता है क्योंकि मन रावण के अनुसार है, रावण आया और प्रलोभन दिया सीता मैया को, कहता है मुझसे विवाह कर लो। सीता जी क्या कहती है? सीता जी कहती है जुगनू की रोशनी जो होती है, जुगनू कितना बड़ा होता है, सूक्ष्म छोटा सा लाइट, ऐसे ऐसे उसके शरीर के पिछले भाग से लाइट निकलती है, कहती है जुगनू की रोशनी से कभी कमल खिलता है, जुगनू की रोशनी से कभी कमल खिलता है, कमल को खिलाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य चाहिए। ऐसे ही रावण तुम्हारा वैभव अधिक है, तुम्हारी शक्ति अधिक है, तीनों लोकों में तुम पूजे जाते हो, लेकिन तुम्हारी शरीर की रोशनी कैसी है, जुगनू के समान, और मैं कमल रूपी तुम्हारे सामने कभी खिलने वाली नहीं। मुझे खिलने के लिए तो किसकी जरूरत है, श्री राम की जरूरत है। यह बात सुनकर के रावण को और क्रोध आता है और अंदर से तलवार बाहर निकालता और कहता है अभी धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। तो इतने में त्रिजटा आ जाती है बीच में। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरित्र रति निपुण विशेषा। इसके अंदर राम के चरित्र का बड़ा ही प्रेम है। क्यों? त्रिजटा को वर्णन किया गया विभीषण की पुत्री है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उसका निपुण विवेक है, प्रेम है रामचरण जी के चरणों में। त्रिजटा कहती है रावण रुक जाओ, थोड़ा समय और दे दो, एक महीने का समय दे दो, मैं इसको तैयार कर दूंगी तुमसे विवाह करने के लिए। तो विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा, वो भी राक्षसी वहां विराजमान है, और उसकी पुत्री का नाम है त्रिजटा। ये दोनों मिलकर के रोक लेती है रावण को। रावण कहता है ठीक है, अगर तुम समय पर तैयार नहीं हुई तो इस बार मैं जबरदस्ती तुमसे विवाह कर लूंगा। छू क्यों नहीं पाता है रावण? शराब नहीं है। रावण जो है कभी भी सीता महारानी को छू ही नहीं सकता। तमोगुणी व्यक्ति कभी भी राम की जो पत्नी है अंतरंगा शक्ति, उनको छू नहीं सकता है। पहले तो अंतरंगा शक्ति को जो पंचवटी बनाई थी उसी के अंदर भगवान श्री राम ने अग्नि देव को अपनी पत्नी प्रदान कर दी और उनसे छाया रूपी सीता को प्राप्त किया, और वो छाया रूपी सीता को भी रावण बाहरी रूप से स्पर्श कर पा रहा है लेकिन ले जा नहीं पा रहा। असली सीता को तो छुआ ही नहीं कभी रावण ने, क्योंकि सीता जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और कौन छू सकता है? गीता में वर्णन किया है भगवान ने, महात्मनस्तु माम पार्थाम देवीम प्रकृतिम आश्रितम। देवी प्रकृति जो है मेरी अंतरंगा, उसको महात्मा लोग ही छू सकते हैं, वही उसके शरण में जाते हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो कभी भी कहां नहीं आएंगे, सीता रानी की, राधा रानी की शरण में नहीं आएंगे। वो किसकी शरण में जाएंगे? दुर्गा देवी की शरण में जाएंगे। हम रामनवमी में बनाएंगे राम का जन्म, बाकी लोग बनाएंगे दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी, कंजक को खिलाएंगे। शास्त्र में कहीं भी कंजक का वर्णन नहीं है। वैष्णो देवी जो कि वैष्णवी हैं, उनकी कृपा से बाद में ये प्रारंभ हो गया। इसका एक विशेष हमारा टॉपिक है, तो उस पर हम कभी चर्चा कर सकते हैं कि ये कहां से प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ। तो प्रभु जी कभी बुलाएंगे तो किसी दिन हम दुर्गा पूजा कहां से प्रारंभ हुई इस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से त्रिजटा ने रोक दिया, कहा नहीं नहीं आप जो है ना चले जाइए। और त्रिजटा जब वो चले गए रावण, तो त्रिजटा क्या कहती है? त्रिजटा सीता मैया की सांत्वना बांधते हुए कहती है घबराइए मत, मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण को गधे के ऊपर बिठा करके चारों तरफ से आग लगा दी गई है लंका में, और उसको मारते पीटते ले जाया जा रहा है, उसकी 10 भुजाएं काट दी गई हैं, 10 सर हैं लेकिन 10 भुजा नहीं है, गधे के ऊपर बैठा है और चारों तरफ आग लगी है और रोता चिल्लाता हुआ रावण चला जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर तुरंत ही अशोक तुम्हारा शोक जाने वाला है, और ये जो वाटिका है ये अपना नाम सिद्ध करने वाली है अशोक वाटिका। इसमें आपको एक सुंदर वर्णन बता देते हैं। अशोक वाटिका जो है, ये वाटिका का चरित्र जो सुनता है उसको भी शोक जीवन से चला जाता है, जीवन से शोक चला जाता है। तो यहां पर अशोक वाटिका की लीला के अंदर क्या आता है कि हनुमान जब देखते हैं कि सीता महारानी को त्रिजटा ने अशोक वाटिका के नाम प्रसिद्धि की चर्चा करी, ऊपर से एक अंगूठी फेंकते थे। तो ये अंगूठी फेंकना क्या शिक्षा देता है? गुरु भी ऐसे ही करते हैं, जब जीवात्मा को दुखी देखते हैं तो भगवान का नाम स्मरण कराने के लिए उसके जीवन में क्या फेंक देते हैं? एक माला फेंक देते हैं, कहते हैं ये ले पकड़, इससे जब तक भगवान नहीं आ जाए तब तक क्या करता रहे, अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और सीता मैया कौन है? वर्णन आता है सीता मैया लक्ष्मी है। रावण ने उनको क्या कहा कि तुम मेरी हो। इस संसार में अधिक लोग भी यही करते हैं। जितना भी धन हमारे घरों में रखा है, तिजोरियों में आपने दो दो चाबी डाल के रखा है, एक चाबी फिर एक और चाबी तिजोरी, जिसका बही खाता माता पति को नहीं बताती, पति माता को नहीं बताते, सबके अपने अपने अकाउंट है, उसको क्या कहते हैं, ये किसका खजाना है? मेरा खजाना है। ऐसे ही रावण क्या कहता है, सीता कौन है? मेरी। थी किसकी? राम की। ऐसे ही आपके घर में जो खजाना किसका है, तो देते क्यों नहीं? बोले प्रभु जी तन मन धन तीनों आपके अर्पित है, लेकिन तन दे सकते हैं, मन दे सकते हैं, धन की बातें मत किया करिए। धन तो हमने मेहनत पसीने से गाड़ी कमाई से जोड़ जोड़ के रखा है, लेकिन जब आप शरीर छोड़कर जाएंगे, आपके साथ इस धन में से कितना जाने वाला है? तिजोरी की चाबी ले जाएंगे? चाबी तो ले जा सकते हैं, खजाना तो बड़ा है, पैसे ज्यादा है, चाबी यहाँ साइड में डाल के, यहाँ डालती है ना माता, हाँ सब निकल जाता है तो फिर। हाँ जी, कफन की जेब नहीं होती है, कफन के बाद में गले में कहीं कंटी वंटी डाल के कहीं नहीं ले जा सकते एक भी रुपया, है ना। और वहां करेंसी चलती भी नहीं, अगर छुपा के ले भी जाए दांत के अंदर यहाँ दबा करके कि दांत में ना यहाँ डॉलर लगा लूंगा, तो वहां करेंसी नहीं चलती है। जैसे आप हिंदुस्तान से अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका की करेंसी है क्या है? डॉलर। जापान की करेंसी क्या है? येन। ऐसे ही यूरोप की करेंसी क्या है? यूरो। तो साकेत धाम की करेंसी क्या है? हरि नाम। वहां पर आप जाके बोलेंगे अरे पानी की बोतल दे दो प्यास लगी है, कहेंगे नीचे मंदिर बन रहा था तुमने बोला दान दे दो, दिया था दिया था, वहां नहीं दिया तो यहां क्यों मांग रहे हो? करेंसी तो वही चलती है। नाम जपा? नहीं, नाम भी नहीं जपा। तो जितना हरि नाम जपा होगा, जितना भगवान नारायण की सेवा में लक्ष्मी को लगाया होगा, तो हम भक्त बन जाएंगे। हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने सीता महारानी को रावण के चंगुल से निकालकर किसको दिया? अपने लिए रखा, किसको दिया? राम को दे दिया। ऐसे ही आपको हनुमान स्वरूप भक्त बनने के लिए जो कुछ भी है उसमें से कुछ परसेंटेज भगवान नारायण की, तेरा तुझको अर्पण, ये तो प्रसिद्ध श्लोक है, आपको सबको आता है। बोले प्रभु जी लेकिन गाते हैं देते नहीं, तो गाने के साथ साथ देना भी प्रारंभ करेंगे। देखिए एक बात बता देता हूं, देने में बहुत आनंद है, पता है कैसे? मैं आपको दो परिस्थितियां बताता हूं, बताइएगा आनंद ज्यादा किस में आया। आप धूप से आए हैं, आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, और साथ साथ में जो पहले आपने रास्ते चलते लस्सी पी थी वो पेट से बाहर आने को तैयार है, पेट से पेट भारी हो रहा है, अभी आपको यूरिन करने के लिए जाना है, लघु शंका है, आपको प्यास भी लगी है, अब आप पहले पिएंगे या पहले टॉयलेट जाएंगे? क्यों? पी लो ना पहले आराम से। क्यों? अच्छा ठीक है, आपने दोनों कार्य किए, निवृत्त भी हुए और प्रवृत्त भी हुए, निकाला भी और लिया भी, ज्यादा आनंद किस में आएगा? तो ऐसे ही जब हमारा धन जो है ना, इसको डालने में जितना आनंद है उससे ज्यादा निकालने में आनंद आता है। निकालना चाहिए, जितना निकालेंगे ना, नदी के अंदर भी काई जम जाती है अगर नदी का भावा प्रभाव रोक दिया जाए। तो हम सबको अपना तन अपना मन अपना धन सब भगवान राम रघुवंश के राम के चरणों में लगाना चाहिए। कहते हैं रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ वर्णन है, सीता मैया सशोक थी और हनुमान ने परिस्थिति को देखते हुए क्या प्रारंभ कर दिया, कथा राम कथा वही हो रही है यहाँ पर, यही हनुमान का काम ही यही है, रामचंद्र का गुण गाना। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, और जैसे ही वर्णन किया क्या हुआ, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इसको ध्यान से अगर सुनेंगे, इसके अंदर डूब के अगर सुनेंगे, जीवन की शुरुआत कथा से हो, जीवन का अंत कथा से हो, तो जीवन में कोई व्यथा नहीं रह जाती है। हमारी सारी व्यथा है क्योंकि हम क्या नहीं सुनते हैं कथा। वासुदेवम कथा रुचि, भागवत वर्णन करता है वासुदेव की कथाओं में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार से रामचंद्र का गुणों का वर्णन किया, सीता जी का दुख भाग गया। सीता जी का दुख भागने पे कहते हैं आप कौन हैं बलशाली, आपने इतना सुंदर राम का वर्णन किया है इस लंका में। कहा मैं राम भक्त हनुमान हूं, माँ आप ही के लिए ये अंगूठी लेकर आया था, मुद्रिका एक मगमा ही मुद्रिका लेके आया। अंगूठी देकर के कहा मुझे बहुत आनंद हुआ तुम राम के साथ, तो जल्दी मुझे यहां से ले चलो। अब देखिए एक और शिक्षा दे रहे हनुमान जी, चाहते तो क्या देर थी, जो रावण जैसे को मार सकते हैं, लंका में आग लगा सकते हैं, एक छलांग में अरेबियन सी पार कर सकते हैं, सॉरी इंडियन ओशियन पार कर सकते हैं, ऐसे हनुमान जो है वो क्या सीता मैया को गोदी में उठा करके नहीं ला सकते। जब ऋषिमुख पर्वत पर पहली बार राम लक्ष्मण को देखा तो कैसे कंधे पे बिठा के लेके आए थे, तो राम सीता महारानी को रखते और बोलते जय श्री राम और उस पार हो गया काम खत्म। लेकिन हनुमान ने सीता जी को कहा मैया राम का नाम जपती रहो, कथाएं जो मैंने सुनाई है इसमें मग्न रहो, चिंता मुक्त हो जाओ, रामचंद्र समुद्र के किनारे आ गए तुरंत आपको लेने आएंगे। कहा लेकिन बेटा तुम क्यों नहीं ले जाते हो। कहा माता अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो वो यश जो राम को मिलने वाला है किसको मिल जाएगा। तो भक्त ऐसा होना चाहिए जिसको यश की कनक गामिनी मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं। भगवान की सेवा करने वाला भगवान और क्रेडिट लेने वाले हम बन जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो मंदिर में आया, उसने प्रसाद खाया, अब वो बहुत बड़ा भक्त बन गया, बहुत ही सुंदर उसके अनुभव होने लगे। अब वो जब अनुभव बताता है अपने में मंदिर आता था मैं खिचड़ी तो मैं खिलाता था प्रभु जी, मैं बनाता था खिचड़ी, बड़े भाव से बनाता था खिचड़ी। माला किसने दी तुमको पहली माला, मैंने दी थी। गीता किसने पढ़ाई आपको, क्लास में तो आप मेरी आते थे, तो सब क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन बनाया किसने उसको भक्त, राम की इच्छा हुई। राम जिसको चाहते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, वो धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करता है। भक्ति लता बीज तो गुरु की कृपा से मिल जाएगा, लेकिन वो बढ़ेगा कैसे, आपकी श्रद्धा से, अपराध रहित भजन से। लेकिन अगर आप अपराध करेंगे, भजन कच्चा होगा, कोमल श्रद्धा होगी, तो भक्ति लता बीज सूख जाएगा। और भक्ति लता बीज सूखने का कारण ही है वैष्णव अपराध। जितना भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भक्ति लता बीज पूरा सूख जाता है। लता तो छोड़ो, एक पत्ता तक बाहर नहीं निकलता। इस प्रकार से हनुमान ने कहा मैं यश नहीं लेना चाहता हूं, यशस्वी कौन है, श्री राम ही यश के भागीदार है। और तुरंत वहां से जाने लगे। कहते हैं माई मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। माँ ने कहा कि चारों तरफ फल ही फल है हनुमान, जो खाना चाहो खा लो, लेकिन बच के रहना, यहाँ के राक्षस बड़े खतरनाक हैं, कहीं तुम्हारा कुछ करना दे। सीता जी कितनी भोली है, बोली चिंता मत करो, और उठा उठा कर खाते थे, और जो फल पसंद नहीं आते थे उस पेड़ को ही तोड़ डालते थे। हाँ क्या खराब पेड़ है, इसमें पानी नहीं डाला ढंग से, खट्टे फल है, कड़वे फल है, चक चक के फल खा रहे हैं, आनंद लेके फल खा रहे हैं। इतने में रावण के दूत रावण को बताते हैं अरे बड़ा गजब हो गया, पूरी अशोक वाटिका में एक बानर घुस आया है, तोड़ फोड़ कर दिया। तुरंत वो बेचता है अपने बेटे को अक्षय कुमार को। ये फिल्म वाला अक्षय कुमार नहीं है, रावण का बेटा। एक बार मैं अपने बेटे को बता रहा था ये कथा, मैं अपने पुत्र को सुना रहा था, तो मैंने उसको बोला अक्षय कुमार आ जाता है, कहते रामायण में भी आता था क्या। मैंने कहा नहीं बेटा, वो रामायण में वो वाला अक्षय कुमार रावण का बेटा था, ये अक्षय कुमार तो बाद में नाम रखा है। अच्छा, वो बोला त्रेता युग में भी था अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार जैसे आता है, भगवान का भक्त हनुमान एक बहुत बड़ा पेड़ उठाकर अक्षय कुमार को खींच के मारते। एक ही पेड़ लगने से अक्षय कुमार की मृत्यु हो जाती है। कई वानर, कई सारे जो राक्षस थे उनका वध कर देते हैं हनुमान। ये सारी खबर मिलती है रावण को, तो रावण अपने पुत्र मेघनाथ को कहता है अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है। मेघनाथ जाता है और आकर के पहला ही बाण चलाता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को देख करके हनुमान कहते हैं अरे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, अगर मैंने इसको काट दिया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, अब देखिए भक्त कैसा होता है, शिक्षा है कि दूसरे भक्त के गुण को नीचे ना करना, यह भक्त का गुण। भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, अगर तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे कर्मों से भी किसी को दुख लगता है तो च ना मे प्रिया, वो मेरा प्रिय बनने योग्य नहीं। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ कुछ किया वो भी अपने लिए, लेकिन किसी को दुख लग गया, भगवान कह रहे वो भी मेरा प्रिय नहीं। ऐसा कार्य मत करो किसी वैष्णव को दुख लग जाए। तो ब्रह्म अस्त्र को काट सकते थे हनुमान, लेकिन ब्रह्मा जी को दुख लग जाएगा ये सोच करके नतमस्तक कर दिए और ब्रह्म अस्त्र आकर के पैरों में गिर गया। अब ब्रह्मा जी के अस्त्र ने भी मारा नहीं, समय देख करके नागपाश में मेघनाथ ने दूसरी शक्ति चलाई, नागपाश में हनुमान को बांध लिया। शिव जी यहां पर पार्वती जी को वर्णन करते हैं, तुम जानते हो कि अब क्या होने वाला है? कहा लगता है अब तो लंका में सब कुछ समाप्त होने वाला है। कहा हाँ, इसलिए अब तुम मुंह मोड़ लो अपना। कहा मुंह मोड़ लो तो क्या करूं? बोले बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पार्वती कहती है आप बचाएंगे नहीं? तो शिव जी कहते हैं क्यों बचाओ? कहा पहले तो बचाते थे। कहा पहले इसलिए बचाता था क्योंकि असली मारने वाला आया नहीं था, अभी असली मारने वाला अवश्य रक्षिव कृष्ण, जो कृष्ण है वो अवश्य रक्षा करते हैं, ये वैष्णव को मालूम है। राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण मारने पे आ जाए तो कोई रक्षा बचा नहीं सकता और कृष्ण बचाने पे आ जाए तो कोई कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो, तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता अगर भगवान रक्षा करना चाहते। शिव जी ने कहा अरे सबको बचाने वाला खुद ही मारने आ गया तो मैं क्या करूं? अब पार्वती तुम देखो ही मत, क्या पता रावण को मरते मरते ये दुख लग जाए। शिव जी देख रहे थे लेकिन आए नहीं बचाने, तो चाहे अब कितना भी ओम नमः शिवाय करे, हम रावण बोल रहा था ओम नमः शिवाय, लेकिन शिव जी कितना ओम नमः शिवाय कर ले अब काम नहीं करेगा, क्योंकि मारने वाला ही आ गया है, जो सबको मारता है जो सबको बचाता है वो खुद ही आ गया है, इसलिए कारगर नहीं है। पार्वती को बोले तुम भी मुंह मोड़ लो और हरि नाम में ध्यान लगाओ। तभी रावण के राज्य में पकड़ करके ले गए हनुमान को और कहा वानर को काट डालिए। विभीषण कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, दूत को कभी भी मारना नहीं चाहिए। तो रावण कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी युक्ति समझ में आती, मारना नहीं चाहिए, ऐसे भी छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। रावण कहता है बंदर को उसकी पूंछ प्यारी है, बंदर की पूंछ में आग लगा दो, जलकर भस्म हो जाएगी, बिना पूंछ के पहुंचेगा तो रामचंद्र जी हंसेंगे, हमारा दूत बिन पूंछ का आ गया है ना, पूंछ कटा के, जैसे मूंछ कटा के आते हैं ऐसे पूंछ कटा के आ गया, तो पूंछ कटा करके आ गया। हनुमान जी हंसते रहे, बोले ठीक है। कहते हैं पूरी लंका का जितना कपड़ा था वो सब लग गया, पूरी लंका का कपड़ा, पूरी लंका में जितना तेल था सब लग गया। हनुमान जी की पूंछ विशाल होती जा रही है, फिर भी देखते हैं तो कुछ जगह बाकी है। कह रहे पूरी भस्म कैसे करें, सारे लंका के दरवाजे, रावण का बेडशीट वेडशीट सब ले आए, सब बांध दिया, सारा तेल निकाल के डाल दिया, फिर भी हनुमान की पूंछ बढ़ते जा रही है। विशेष ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान का भक्त शक्तिशाली है। और जब विशाल हो गई, उसमें आग लगाई, हनुमान क्या बन गए? मशक रूप धरी, मशक रूप रख लिया, मच्छर हो गए, पूंछ निकल गई जुर्र से, कपड़ा वहीं का वहीं गिर गया, सब में आग लग गई। हनुमान बड़े चतुर थे, है ना। तो इस प्रकार से जब अग्नि लगी तो पार्वती पूछती है शिवजी से, अच्छा देखिए शिवजी बार बार मना कर रहे हैं और पार्वती मान नहीं रही है ना। पार्वती इसी, कई बार होता है पुरुष भक्त बन जाते, कहते चाय मत पियो, प्रभुपाद जी अपनी पत्नी को कहते थे चाय छोड़ दो, लेकिन पत्नी मानती नहीं है, पत्नी कहती नहीं मैं तो चाय पीऊंगी, प्रभुपाद जी बोलते थे ये नशा है, कहते कैसे नशा है, शराब और चाय में तो बहुत फर्क है। कहा यही नशा है, यही आदत है कि तुम्हें छोड़ने को कहा जा रहा है तुमसे छूटती नहीं, अगर तुम्हें नशा नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन तुम्हें नशा नहीं लग रहा है लेकिन ये नशा है क्योंकि ये तुम्हारी आदत। पार्वती को मना कर रहे मत देखो, फिर भी बार बार पलट के देख लेती। फिर प्रश्न पूछती है ये हनुमान को आग लगी तो बच कैसे गए? अग्नि से छाले पड़ जाते, कम से कम निकले उसमें से जब तक, तो अग्नि निकली इतनी तेज, तेल में भिगो के कपड़ा बांधा, थोड़ी बहुत छाले तो पड़ते, कुछ भी नहीं हुआ। तो हनुमान पार्वती को शिव जी कहते हैं कि ये जो अग्नि है ये भगवान श्री राम के नियंत्रण में कार्य करती है। भगवान श्री राम के नियंत्रण में काम करने वाली कोई भी चीज भक्त को दुख नहीं दे सकती। कई बार भक्त घबरा जाते हैं, राहु केतु आ गया हमारे जीवन में, प्रभु जी ज्योतिष ने देख के बताया है राहु केतु बड़ा वक्री है, शनि बड़ा भारी है हमारा, हरि नाम नहीं कर पा रहे, मन नहीं लग रहा है। ध्यान से हरि नाम करिए, गुरु से कृपा मांगिए, याचना करिए षट गोस्वामी वृंद से, प्रभुपाद से, और लात मारिए। प्रभुपाद जी बोलते थे हजारों करोड़ों राहु केतु भगवान श्री कृष्ण के नाम के आगे टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि में जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भगवान राम के अनुगत है, श्री कृष्ण के अनुगत है, तो फिर घबराने की बात कैसे। भगवान का नाम है अभयंकरम, भगवान भय से बड़े भय को क्या करते हैं, अभयंकरम, अभय कर देते हैं व्यक्ति को। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम बिल्कुल सही रखा, अभय चरणारविंद। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहने वाले वो हैं जो कि अभय के चरणों में रहते हैं। भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम अभय, इसलिए भक्त को भी कैसा होना चाहिए, भय रहित अभय। कल क्या होगा बोले किसको पता, अभी हरि नाम का ले लो मजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सारी बातें बताई आकर के हनुमान ने, और सीता मैया से एक कंगन लेकर के आए थे, सभी वानरों ने घेर लिया दूसरी छलांग में, समुद्र के किनारे आए और आकर के कहते हैं सुनी सीता दुख प्रभु सुख आई ना, भरी आई जल राजीव नैना। राजीव लोचन, राजीव भगवान का नाम है, तो दो नाम बता दिए अभी हमने भगवान के, एक अभय और एक नाम क्या बताया, राजीव। राजीव नयन के अंदर जल भर गया सीता जी के दुखों को जब सुना, तो कहते हैं वचन काए मम मन गति जाही, सपने ही बुझही विपत्ति के ताही। जो व्यक्ति मेरा नाम जपता है उसको हनुमान विपत्ति कैसे आ गई, क्योंकि सीता तो सदा मेरा नाम जपती रहती है, उसको विपत्ति आई तो आई कैसे। तो सीता मैया के इस प्रसंग पर, राम के इस प्रश्न पर हनुमान कहते हैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। जप करना तो चाहती हैं सीता मैया, लेकिन उनको एनवायरमेंट, उनको वातावरण नहीं मिल रहा है जप करने का, और प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति संसार की वही है जप तप सुमिरन भजन न होई। हमारी विपत्ति क्या है, प्रमोशन नहीं हो रहा, दीक्षा नहीं हो रही, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो रही, संन्यास नहीं हो रहा, भक्ति शास्त्री कोर्स रह गया, फिर से प्रसादम सेवा से चेंज कर दिया, मेरी सेवा बदल दी, ये परेशानियां नहीं है। विपत्ति क्या है, हनुमान कहे विपत्ति प्रभु सोई जब तप सुमिरन भजन ना हो। जिस दिन भजन ना होना सारी विपत्ति वहीं उसी दिन प्रारंभ होती है। इस प्रकार से बताया उन्होंने हनुमान ने कि प्रभु जब तो कर रही हैं परंतु परिस्थिति गंभीर है, आपको तुरंत चलना पड़ेगा। कैसे चलें, समुद्र पे दौड़ जाएं क्या, समुद्र है इतना विशाल और मैं चला जाऊंगा, ये वानर डुपुक डुपुक सब डूब जाएंगे अंदर, इनके लिए क्या करना है। कहा समुद्र से ही पूछते हैं, भगवान ने कहा समुद्र मुझे बताइए कैसे मार्ग मिले। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, देवताओं की पूजा आलसी लोग करते हैं, बड़ा वानर बड़ा व्यक्ति वो होता है क्षत्रिय जो अपना मार्ग खुद रच लेता है। हनुमान हमारे साथ है, जामवंत हमारे साथ है, और प्रभु श्री राम आप साक्षात है, अपना रास्ता बना लीजिए। ये देव देव क्या कर रहे हैं, हे समुद्र देव डोंट रिक्वेस्ट, देव देव आलसी पुकारा, आलसी लोग पुकारते हैं, मार डालो एक तीर निकाल करके। भगवान ने कहा रुको, वैष्णव बनने का मतलब है प्रयास करो पहले परिस्थिति बातों से सेटल हो जाए, फिर बोले हे समुद्र देव कृपा कर मार्ग दीजिए, युक्ति बताइए। फिर तीसरी बार बोले हे समुद्र देव, तीन बार आपको बोलने के लिए बोला गया, पहली बार में झगड़ा नहीं करना चाहिए वैष्णव को, पहले जितनी कोशिश करो सुलझ जाए बात, अगर ना सुलझे चौथी बार में तीर निकाल लिया भगवान, धनुष पे जैसे ही चढ़ाया तुरंत समुद्र देव प्रकट हो गए, प्रभु चलाना मत, एक बार में पूरा समुद्र सूख जाएगा, सारे जल जीव मर जाएंगे। तो बोले फिर हमें रास्ता बताओ, बोले रास्ता ये है कि आपकी सेना में दो परफेक्ट इंजीनियर्स हैं, बीटेक करके आए हैं, नल और नील, है ना। ये नल नील के पास बहुत शक्ति है, ये जिस भी चीज पर आपका नाम लिखकर फेंकेंगे वो तैर जाएगी। बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं लाइए और उससे पानी पर तैरा दीजिए। सभी लोग बड़ी बड़ी श्रृंखला ला करके पानी पर तैराने लगे। भगवान राम ने सोचा सभी लोग तैरा रहे हैं तो मैं भी तैराता हूं। भगवान राम ने भी एक पत्थर उठा करके फेंक दिया। जब फेंका तो बहुत विचित्र हो गया, पानी में डूब गया पत्थर, पत्थर डूब गया तो राम एकदम ऐसे हो गए, हिचकिचा गए, बोले किसी ने देखा तो नहीं। हनुमान ने देख लिया था, हनुमान दौड़े दौड़े प्रभु क्या हुआ, बोले हनुमान तुम मुझ पर इतनी नजर क्यों रखते हो, पत्थर डूबता हुआ भी देख लिया। तो बोले क्यों डूबा, बोले प्रभु इसके दो कारण है, बताओ हनुमान। कहा पहला कारण कि प्रभु उस पर आपका नाम नहीं था, जिस पर आपका नाम नहीं वो इस समुद्र को क्या तर सकेगा, कभी तैर सकता है। जिस व्यक्ति के हृदय पे आपका हरि नाम रूपी नाम होगा वही इस भव सागर में तैर सकता है। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये है कि प्रभु जिसको आपने त्याग दिया ना वो तो इस संसार में डूब ही जाएगा, प्रभु इस पत्थर को आपने त्याग दिया तो ये तो। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए ये बात सुनकर के और वापिस जाकर बैठ गए, बोले इसका मतलब मैं छूना नहीं है मुझे। और यहाँ पर प्रारंभ हो गया, आर्किटेक्चर कार्य चल रहा है। वहां देखते हैं गिलहरी आती है और अपने को पानी के, समुद्र के पानी में भिंगोती है, रेत पर आती है, रेत अपने ऊपर चिपकाती है, वापिस जाती है, फिर छोड़ती है, फिर आती है, फिर जाती है। हनुमान को बहुत क्रोध आया, बोले छोटी सी गिलहरी मेरे कार्य के बीच में आ रही है, दब गई तो मर जाएगी, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। कहते साइड में बैठो तुम। ऐसे कभी कभी बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, वो छोटे छोटे वॉलंटियर्स को डांट देते साइड में। लेकिन राम को अच्छा नहीं लगा, राम आए कहा हनुमान तुम तो विनम्रता की मूर्ति हो, या क्रोध कैसे प्रकट किया तुमने। कहा प्रभु मेरी सेवा में बाधा डाल रही है, मैं चलता हूं इतनी बड़ी बड़ी शिला लेके, गिर गया तो कमर टूट जाएगी, और ये छोटी सी आती है पानी में डूबती है और फिर आकर के रेत डालती है, बीच बीच में जहां गैप है वहां फिल कर रही है बस छोटा छोटा। तो भगवान ने कहा कि देखो पत्थर तो कोई भी डाल देगा, बीच में जो फेविकोल है ना वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रेत जो डाल रही है बहुत मुख्यपूर्ण सेवा है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि वो छोटी है। कहा हाँ वो छोटी है, गिलहरी है और बहुत छोटी है। भगवान ने कहा अगर मैं शक्ति से देखूं तो जितनी उसको शक्ति मैंने दी है उसके अनुसार वो उतनी शक्ति से तीन गुना कार्य कर रही है, और तुमको जितनी शक्ति दी तुम एक छलांग में लंका पहुंच गए और यहां पर तुम छोटे छोटे पत्थर डाल के अपने आप को महाशक्तिशाली समझ रहे। तब हनुमान को समझ में आया, बुद्धि खुल गई, बोले हाँ प्रभु बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो भगवान राम ने ऐसा वर्णन आता है, रामायण में नहीं है परंतु ऐसा वर्णन आता है कथाओं में कि वो गिलहरी बाद में भगवान राम को प्रणाम करने के लिए आई तो भगवान राम ने उसको अपने हाथ से स्पर्श किया। वही तीन लाइनें आज भी गिलहरी के पीठ के ऊपर है, उसकी पूरी परंपरा के अंदर आ गई। ऐसे भगवान ने प्रेम किया उसको ना, तो उस पर वो निशान पड़ गया, भगवान के हाथों का निशान गिलहरी की पीठ के ऊपर दिखाई देता, ऐसा वर्णन आता। तो कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर सारा कार्य चल रहा था, समुद्र के ऊपर पुल बनना प्रारंभ हुआ, तभी देखते हैं विभीषण आ गए। क्यों? क्योंकि विभीषण ने रावण को समझाया आप गलत कर रहे हैं, देखिए वो साक्षात नारायण हैं, उनसे दुश्मनी करना ठीक नहीं है। कहा बहुत बोलता है, विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया। विभीषण आए तो अपने साथ में चार वानर, चार राक्षस लेकर के आए, उड़ते हुए आए, धनुषकोटी नामक स्थान रामेश्वरम के पास, वहां से उड़ते हुए आए। और जब आए आकर के क्या कहते हैं, मुझे रामचंद्र जी से मिलना है। सारे वानर कहते हैं अरे ये तो राक्षस की साइड से आया है, इससे नहीं मिलने दिया जाएगा राम को। कहा पूछ कर बताते हैं। भगवान राम से पूछा विभीषण से मिलेंगे? रामचंद्र जी हंसते हुए कहते हैं क्यों नहीं मिलेंगे। कहा अरे वो हो सकता है राक्षसों का अनुचर हो, उनका कोई दूत हो। भगवान कहते हैं तो क्या हुआ, तुम जानते हो सीता मैया एक दिन मेरे पांव में जब मैं वन में चल रहा था कांटे लगे हुए थे, तो सीता रात को मेरे पैरों से कांटे निकाल रही थी। जब कांटे निकाल रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि सीता तुम मेरे पैरों से कांटे क्यों निकाल रही हो, तो कहते हैं प्रभु आपके चरण तो इतने कोमल हैं इसमें ये कांटे लग रहे हैं, मैं इसलिए आपकी सेवा कर रही हूं, एक एक कांटे को बाहर निकाल रही हूं। भगवान राम ने कहा जिस भक्ति ने मेरी शरण ली है, चाहे वो कांटे की तरह ही क्यों ना चुभे, लेकिन मैं उसको अपने जीवन से कभी नहीं निकालता। तो इसलिए अगर हो सकता है हम कभी कभी गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम भक्ति में क्यों टिके हुए हैं, इसलिए नहीं कि हम टिके हुए हैं, इसलिए कि भगवान कभी हमें त्यागते नहीं। जिस दिन भगवान ने त्याग दिया तो पत्थर की तरह डूब जाएंगे हम भी। भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पर कि भगवान हमको अपने साथ में लगा के रखते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया, विभीषण ने कहा, रामचंद्र जी से मुलाकात हुई, रामचंद्र जी को उन्होंने वर्णन किया कि मैंने अपने भाई रावण को समझाया, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तुम्हारा हित इसी में है कि राम का भजन करो, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। लेकिन रामचंद्र जी उसने मेरी बात को माना नहीं, मुझे निकाल करके फेंक दिया, इसीलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूं। और यहां पर भगवान राम विभीषण को पुकारते हैं, पहला प्रसंग में क्या कहते हैं, लंकेश चिंता की आवश्यकता नहीं है। लंकेश बोल दिया, लंका का राजा बता दिया। सोच के देखिए, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, सेतु भी नहीं बना है, पुल भी नहीं बना, और पहले ही क्या कह दिए हैं, लंकेश। इसलिए भगवान ने कहा चिंता की बात नहीं है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, जहां कुमति होती है वहां पर लॉसेस होते हैं, वहां दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। रावण को इसलिए दुख आ रहा है, इसलिए परेशानी आ रही है, क्योंकि वो कुमति वाला है, इसलिए उसकी लंका जल गई और वो भी मरने वाला है। तुम चिंता मत करो विभीषण, तुम आओ हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। पार्टी ज्वाइन कर ली, पीछे से चार असुर थे, वो बोले हमारा क्या होगा, तो भगवान राम बोले तुम भी ज्वाइन कर लो। बोले लेकिन हम तो राक्षस हैं, हम तो भक्त नहीं है, आपका नाम नहीं जपते। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने मेरे नाम जपने वाले की शरण ली हो, उसके असुरी गुणों को त्याग करके मैं उसके इस गुण को अंगीकार करता हूं कि उसने मेरे एक भक्त की शरण ले रखी है। आपने विभीषण के पीछे पीछे चले, तो इसलिए मैं आपको स्वीकार करने को तैयार हूं। सोचिए, और चारों असुरों का हृदय परिवर्तन हो गया, चारों असुर परिवर्तित हो गए, रामचंद्र जी का नाम जपने लगे। ऐसे ही हम हो सकता है असुर प्रवृत्ति के हो, परंतु श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव के पीछे चलते चलते एक दिन भगवान हमको स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान पीछे चलने वाले असुरों को भी स्वीकार करते हैं। भगवान ने स्वीकार किया, चारों असुरों ने जाकर के रावण को बताया कि बहुत बड़ी सेना आ गई है, इतनी बड़ी सेना है कि 18 पद्म तो वहां पर वानरों के सेनापति हैं, और ऐसे वानर हैं पेड़ को मुंह से उखाड़ लेते हैं, पत्थरों को हवा में उछाल देते हैं, और करोड़ों की तादाद में गिनना मुश्किल है, अनगिनत वानर वहां पर प्रस्तुत हो गए। तो रावण घबरा गया। मंदोदरी कहती है उधर से पुल बनकर इधर आ रहा है, आप इधर से पुल बना के कहीं खिसक क्यों नहीं जाते। मंदोदरी कहती है भक्ति कर नहीं पा रहे हो तो भाग जाओ, भागने का एक ही रास्ता, इधर से तो पुल बनता हुआ वो आ रहा है, इधर से आप बना के भाग जाओ। तो रावण कहता है पुल कैसे बना दूं, कहा आप पत्थर नहीं तरा सकते क्या। बोला पत्थर, अब बोला अगर मैं बोलूं नहीं तो मैं नीचे हो जाऊंगा, और बोलूं हां तो कहेगी तैरा के दिखाओ, पत्नियां तो ऐसी होती हैं, स्त्रियां प्रूफ मांगती हैं, कहा दिखाओ। तो रावण ने एक पत्थर लिया, घबराते हुए आग बंद किया, कुछ मंत्र बोला, कुछ फेंक दिया, आग खोली, तैर रहा था, बच गए। मंदोदरी कहती ओह माय गॉड, आप भी तैरा सकते हैं, मैं तो सोचती थी राम के पास ये शक्ति है, आप कैसे तैरा पा रहे हैं, क्या मंत्र है, क्या शक्ति है। बोला वो मत पूछो, बोले वो सीक्रेट है। कहा नहीं प्लीज, पत्नी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बताओ ना बताओ ना। कहा नहीं नहीं वो नहीं बताओ। कहा बताओ ना कैसे पानी में तैरा दिया पत्थर। तो रावण कहता है मैंने कहा पत्थर तैर जा, तुझे राम की कसम। तो हर चीज संसार में तैर रही है, तो राम की कृपा से तैर रही है ना, एक अंश मात्र भी, अंडे के अंदर भी, एक छोटे से अणु के अंदर, जैसे कहते हैं ना एटम के अंदर, परमाणु के अंदर भी अगर कुछ है तो वो भगवान का प्रतिबिंब है, भगवान की प्रकट शक्ति है, इसी कारण छोटा सा मिट्टी का एक दाना भी तैरता है। इस प्रकार से रावण को वर्णन किया गया, और उन्होंने कहा कि अब बस आपके पास एक ही रास्ता है, या तो भाग जाओ या शरणागति कर दो, मरना आपका निश्चित हो गया है। तो उन चारों असुरों को जो आए थे वापस राम के भक्त बनकर के, उन चारों को भी उसने निकाल दिया और कहा मेरे सामने से चले आओ वरना मार डालूंगा। एक बच गया था उसको मार ही डाला, वहां पे फिनिश कर दिया। तो बेचारी एक की हानि हो गई है ना। जैसे हमारा हवाई जहाज गया था पाकिस्तान में, तो एक गिर गया उधर से, बच गया लेकिन मार भी सकते थे। तो इस तरह से नल नील के आशीर्वाद से पुल बनना प्रारंभ हुआ। और आखिरी सुंदर कांड में आता है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। ये जो गुण है रामचंद्र जी के, ये सुमंगल प्रदान करते हैं। सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस संसार में अगर पत्थर तैर सकते हैं तो इस बात की पुष्टि करता है सुंदर कांड। जो व्यक्ति इस सुंदर कांड का श्रवण करेगा सुंदर तरीके से प्रेम पूर्वक, सादर सुनहि, सादर आदर के साथ सुनेगा, ते तरहि भव सिंधु, वो भव सिंधु को पार कर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा।